ஓம் சாந்தி. ஏக் சோட்டா சா சுந்தர் சரல் ஷப்த ஹை ஜோ ஹம் ரோஜ் கை வார் போல்தே ஹை ந கேவல் சாதாரண மனுஷ்ய பல்கி बड़े से बड़ा विद्वान भी वो ये शब्द बोलता है और उस शब्द को अभी तक समझने में मनुष्य को बहुत समय लगता है। छोटा है शब्द और उसकी उसको कहते हैं हम गुत्थी रिडल, ऐसा वो शब्द है। वो है मन, ठीक है। मन शब्द यहां हम स्कूल में बैठे हैं, जिनके पास नोटबुक और पेन है वो यदि निकालेंगे तो कुछ एक शब्द आपको मिलेंगे आज नए, ऐसा मैं समझता हूं। आप देखेंगे पुरातन काल से लेकर के आज मॉडर्न साइंस तक इस शब्द को समझने में मनुष्य बहुत समय लगाता है और हम बच्चों के सिवाय यह किसी को मैं समझता हूं समझ में नहीं आता है। वैदिक मैंने कहा पुरातन काल से, तो ये जब हम कोर्स लेते हैं या देते हैं तब हम साप्ताहिक कोर्स 7 डेज कोर्स, उस समय जो पहला लेसन हम देते हैं वो है आत्मा का, ठीक है ना। आत्मा का देते हैं, आत्मा का देते समय आत्मा बीच में दिखा करके नीचे मन और बुद्धि और संस्कार तीन शब्द दिखाते हैं और हम ये बोलते हैं कि मन के ये तीन अंग हैं। मन मन से बुद्धि, बुद्धि से संस्कार और उन तीनों शक्तियों से मिल करके एक आत्मा बनती है। हम इसको कहते हैं शक्ति। मन एक शक्ति है, परंतु कल तक हमने ये सुना कि ये जो मन है क्या है, मन क्या है, तो कहा मन चंचल है, बेलगाम घोड़ा है। गीता में भी कहा गया कि वायो रिव, यह वायु के समान है, जैसे वायु को हम पकड़ना चाहेंगे तो हमारी पकड़ में नहीं आता है, ऐसा मन वायो रिव वायु के समान। तो हर व्यक्ति इसी भावना से आज जीवन बिता रहा है कि ये मन चंचल है, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जबकि यहां हम ज्ञान में आते हैं तो थोड़ा यहां भी समझने की जरूरत होती है कि ये मन है क्या, ऐसे क्या कोई जैसे आत्मा है ऐसे है, ऐसा नहीं है ना। मन आत्मा की, आत्मा जो विचार करती है, आत्मा जो सोचती है, आत्मा जो संकल्प करती है उसको मन कहते हैं। मन कोई अलग ऐसे है नहीं। मेरा मन ऐसे बोलने में आता है, जैसे हम सबको समझाते हैं कि मैं आत्मा हूं, मेरी आत्मा नहीं, मैं ही आत्मा हूं, आत्मा ही मैं हूं, मेरी आत्मा नहीं। क्योंकि जो मेरी है, मेरा है, वो फिर मैं से परे है, दूसरा है। तो यहां हम समझते हैं कि ये मेरी आत्मा जब बोलेंगे, ऐसे ही फिर बोल देते हैं मेरा मन। तो फिर मेरा मन और मेरी आत्मा, तो प्रश्न ये उठता है कि मैं कौन हूं। इसका उत्तर अभी तक नहीं मिल पाया था। अब बाबा ने कहा कि बच्चे, ये जो मैं शब्द है, वही तुम आत्मा हो, तुम ही आत्मा मन हो, तुम ही आत्मा हो, तुम्हारी आत्मा, मेरी आत्मा, ऐसा नहीं होता है। तो ये मैं जो आत्मा हूं, मैं ही संकल्प करती हूं, मुझ आत्मा में ही संकल्प शक्ति है, मैं ही सोचती हूं, मैं ही सोच सकती हूं। अभी जो सोच है, विचार है, थॉट्स है, थिंकिंग प्रोसेस है, ये इसको कहा गया कि जैसे कहीं कहा कि हम निसंकल्प होना चाहते हैं, एक आत्मा की स्थिति है, ऐसा बोला गया है, निसंकल्प स्थिति। परंतु निसंकल्प कभी भी कोई भी हो नहीं सकता है, निसंकल्प होना असंभव। फिर क्या हो सकते हैं? फिर कहा गया कि निर्विकल्प समाधि, निर्विकल्प होना। क्योंकि जैसे ये कहा जाता है, टाइम एंड टाइड नेवर स्टॉप्स, समय और समुद्र की लहरें, ये कभी रुकती नहीं है। ऐसे ही ये संकल्प भी नहीं रुकते हैं। ये संकल्प इवन यदि आप मानेंगे, यदि ये जो सूक्ष्म शरीर होते हैं ना, उनमें भी संकल्प होते हैं, वो भी संकल्प के आधार पर ही दौड़ी लगाते हैं। सूक्ष्म शरीर, वो भी, उनको भी संकल्प होते हैं। तो संकल्प किए बिना कोई रह नहीं सकता। और कई बार बाबा बोलते हैं, बच्चे असोचता बनो, असोचता बनो। अब बाबा कह तो दिया असोचता बनो, पर हमको सोचना पड़ेगा कि असोचता तो हो नहीं सकते, सोच तो चलती है, बिना सोच के हम रह नहीं सकते, माना बिना संकल्प किए नहीं रह। तो संकल्प नहीं करो, माना नेगेटिव संकल्प मत करो। क्योंकि हम आत्माओं में ये बहुत बड़ा जबरदस्त अभ्यास है, नेगेटिव संकल्प करने का, नकारात्मक संकल्प करने का, या वेस्ट संकल्प, व्यर्थ संकल्प करने का, ये संस्कार बना हुआ है। क्योंकि द्वापर से यहां तक हम लोगों ने यह हमारी आदत बना ली है, आत्मा ने आदत बना ली है। अब उस नकारात्मक संकल्पों को, नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव करें। आपको पता होगा, बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो पॉजिटिव थिंकिंग कोर्सेस चलते हैं, हजारों रुपया लेते हैं, परंतु वहां से वापस आने के बाद मनुष्य फिर वही संकल्प नेगेटिव, वही संकल्प व्यर्थ करने लग पड़ता है। यहां पर जब हम बाबा के पास आते हैं, तो बाबा हम बच्चों को एक पॉजिटिव संकल्प पहला क्या देते हैं कि बच्चे, तुम शरीर नहीं हो, शरीर से अलग एक तुम आत्मा हो। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव संकल्प है। क्योंकि आत्मा हम समझने से, देखिए, मनुष्य भय त्रस्त होता है, उसको भय है, हर एक मनुष्य को भय है कि वो मरेगा, और बोलता भी है मरना तो है ना। अब मरना तो है, कौन मरता है, तो कहता है मैं मरता हूं। ऐसे ही बोलते हैं ना, मैं मरता हूं। तो अब मैं मरता हूं कौन बोल रहा है, मैं बोल रहा हूं। अब यहां आते हैं हम, हमको ये नॉलेज मिली कि ये जो मैं है आत्मा है, और आत्मा नहीं मरती है, मैं अमर हूं। ऐसे हमको कहा भी गया, हे अमृतस्य पुत्राः, हे तुम कौन हो, अमर बाप की अमर संतान हो। तो ये जो मृत्यु है ये एक गैप है, जिसको हम कहते हैं चेंज ऑफ ड्रेस एंड एड्रेस। मृत्यु जहां पर हमारा ड्रेस चेंज होता है, शरीर चेंज होता है, और हमारा पता चेंज हो जाता है, हमको याद नहीं रहता है। क्यों याद नहीं रहता है? क्योंकि इसको कहा ही जाता है भूल भुलैया का खेल रे भैया। यह खेल है ना, भूल भुलैया का है। तो इसमें हम कुछ बातें भूलते हैं, कुछ बातें याद रखते हैं। तो ये भी एक ड्रामा में बना हुआ है। अब ड्रामा शब्द उपयोग करते हैं तो दादी जानकी को आप यहाँ याद करेंगे, वो तीन शब्द बोलती हैं। ओम शांति जब तीन बार बोलती हैं तो कहती हैं एक ओम शांति मैं कौन, दूसरा ओम शांति मेरा कौन, तीसरा ओम शांति ड्रामा। तो यहाँ ये तीन शब्द हमको पॉजिटिव थिंकिंग करने के लिए बाध्य करते हैं, मजबूर करते हैं। ये पॉजिटिव कि मैं कौन, मैं भौतिक व्यक्ति नहीं हूं, बल्कि भौतिक शरीर में एक अभौतिक आत्मा हूं, अधिभौतिक आत्मा हूं मैं। मेरा कौन, तो हमने ये मेरा का एक रट लगाया था कि मेरी माँ, मेरा बाप, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा पति, डिसेंडर। तो ये जो मेरा थे ये सब मेरे छोड़ के जाने वाले हैं, कोई भी मेरे साथ नहीं चलता है। फिर क्या चलता है मेरे साथ? मेरे साथ मैं चलता हूं और मेरे संकल्प चलते हैं, और संकल्पों के माध्यम से जो मैंने जमा किया है पॉजिटिव, वो मेरे साथ चलता है। मैं जहां भी जन्म लूंगा वहां ये मेरे साथ चलते हैं। तो ये सोच जिसको हम कहते हैं मन, तो ये जो मेरा है, मेरा बाबा, तो ये अब हम बोलते हैं ऐसा मेरा बाबा। वहां आप देखेंगे वैदिक साहित्य में एक शब्द बोलते हैं तन में मनः शिव संकल्प मस्तु। तन में मनः शिव संकल्प मस्तु, तो वह मेरा मन शिव संकल्प करने वाला हो। अब वह मेरा मन बोलने वाला कौन है, वहां भी मैं कहता कन्फ्यूजन है उसको भी, पर हम बच्चों को ये कन्फ्यूजन नहीं है कि वह मेरा मन नहीं, मैं ही शिव संकल्प करूं, माना शुभ संकल्प करूं। शुभ संकल्प, शुभ मन, तो कहते हैं मन को सुमन बनाओ। तो मन को सुमन बनाओ, माना जो श्रेष्ठ संकल्प हैं उन संकल्पों को आप श्रेष्ठ बनाओ। आप श्रेष्ठ बनाने की कला तो लौकिक में किसी के पास है नहीं, क्योंकि लौकिक माना अलौकिक, उसमें न तो अलौकिकता है न तो पारलौकिकता की बात है। अब लेंगे समझिए गीता, रामायण या पौराणिक साहित्य या उपनिषद या कोई भी नावेल, नाटक, काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य, कुछ भी लेंगे, वहां भी वही लौकिक विषय पर ही मिलते हैं। नहीं नहीं वहां पर तो देवताओं के विषय मिलते हैं, पर वो देवताएं भी मारामारी करते हैं, उनमें भी बहुत सारी चंचलता दिखाते हैं, बहुत सारे कुवचन बोलते हैं, वो लोग गालियां देते हैं, गुस्सा करते हैं, क्या 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 नहीं करते। अब वो सोमरस भी पीते हैं, हमको बाबा सूबी रस पिलाता है और वो सोमरस पीते हैं तो फर्क हो जाता है। पौराणिक साहित्य में भी आप देखेंगे सारा साहित्य बिना युद्ध के और कुछ भी नहीं है। अब ये युद्ध सारे साहित्य में है तो जब युद्ध है तो वो युद्ध व्यक्तियों के साथ है। अब यहाँ हमको जो बाबा सिखाता है वो बाबा कहता है ये मन का युद्ध है। बच्चे तुम इनकॉग्निटो वॉरियर्स हो, बराबर ना। युद्ध यहाँ भी है कि हम युद्ध कर रहे हैं पर हम जो युद्ध कर रहे हैं वो गुप्त है, प्रत्यक्ष नहीं है, कोई नहीं जानता कि ये किससे युद्ध कर रहे हैं। तो बाबा कहेगा तुम रावण से युद्ध कर रहे हो। अब वो रावण तो हमारा रावण अलग ही है, उनका रावण अलग है ना। तो इसीलिए ये जो लोग सोचते हैं कि हम वो गीता पाठ करेंगे या रामायण पढ़ेंगे या पौराणिक सवेरे सवेरे पढ़ते हैं तो उनसे यही पाठ मिलता है मारो काटो। यहाँ आप आते हैं तो यहाँ बाबा कहता है कि बच्चे इन ये जो विकार हैं इनसे तुम्हारा युद्ध चलता है। अब सबसे एक तरफ कहा गया गीता में आप देखेंगे एक शब्द है बहुत सुंदर, जहि शत्रुम महाबाहो कामरूपम दुरासदम। हे महाबली अर्जुन तू कामरूपी महाशत्रु को जीत। कामरूपम दुरासदम अजिंक्य जिसको माना उसको जीत नहीं सकता कोई ऐसा है परंतु तुम उस पर जीत पाते हो। सुना आप देखेंगे मैं क्यों कह रहा हूं जीत नहीं सकता। उनके पास एक बहुत बड़ा उदाहरण है, आप लोग सब जानते हैं विश्वामित्र। तो मैं उसको पर्सनली कहता हूं वो विश्व अमित्र, विश्व का वैरी। एक ऐसा जबरदस्त रॉन्ग उदाहरण उन्होंने दिया कि ये विश्वामित्र जैसा ब्रह्मऋषि महाऋषि वो भी मेनका से हार खा गया, ऐसा दिखाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि ये असंभव है। जब ब्रह्मा कुमार कुमारियां ये कहते हैं कि हम ऐसा करते हैं तो उनको विश्वास नहीं होता है। मैं कई बार कहता हूं कि एक बार हम ओम शांति भवन में 1985 में एक बहुत अच्छा कॉन्फ्रेंस किया गया जिसमें 85-87 होगा जिसमें भारत के अनेक सन्यासियों को बुलाया गया था, विद्वांसों को बुलाया गया था, उन सब को एक ही स्टेज पर बिठाया गया था। बड़ी दादी ने क्या किया कि इस ज्ञान में चलने वाले जो कम उम्र के युगल थे यंग कपल्स उनको ओम शांति भवन के स्टेज के ऊपर ही स्टेज के ऊपर सामने बिठाया। जब योग पूरा हुआ तो दादी ने उठ करके उन सन्यासियों से कहा कि ये मेरे महावीर भाई बहन हैं जिन्होंने युगल होते हुए भी पत्नी सपत्निक ये पवित्र आत्माएं हैं, पवित्र गृहस्थ आश्रम में रहने वाले हैं। तो उन लोगों को बड़ा अचंभा हुआ, आश्चर्यचकित हुए कैसे हो सकता है। तो कहा ये हो सकता है, वो ऐसे हो सकता है, आप सब कहते हो मन जीते तो जगत जीत। अब मन जीते तो जगत जीत तो बाबा कई बार कहता है काम जीते तो जगत जीत। अब वो भी कहां से जीतेंगे, वो भी संकल्पों से ही जीतेंगे क्योंकि बाबा खुद कहता है कि बच्चे ये जो कुविचार आते हैं वो सबसे पहले विचार मन में आते हैं। मन में का तात्पर्य है एक शब्द प्रसिद्ध हो गया है, मैंने कहा मन में आते हैं, माना आत्मा में आते हैं, माना मेरे में आते हैं। पहले विचार आते हैं, वो विचार फिर हमारे शरीर के अंगांगों के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं, फिर कार्यान्वित होते हैं। तो ये जो स्मृति और वृत्ति, स्मृति आएगी और वो स्मृति आंख से, चेहरे से, ऐसे बदलाव होगा उसका, और उसके बाद फिर वो कृति में आएगा। तो ये स्मृति के बाद, वृत्ति के बाद कृति, ये मन माना, ये संकल्प जो है ना, ये कैसे काम करते हैं, ये संकल्प आया, वो संकल्प फिर सारे शरीर में, पहले तो चेहरे में छा जाएंगे, फिर बाद में वो कृति में आएंगे, कर्म में आएंगे। तो ऐसा ये जो मन है, यहाँ जीतो तो जगत जीत, तो ये जगत जीत कौन बन सकता है, वही बन सकता है जो इस संगम युग में ईश्वरीय संतान बनता है, क्योंकि ईश्वर एक ही ऐसा, ईश्वर एक ही ऐसी आत्मा, परम आत्मा है जो इस जिता सकती है, विजयी बना सकती है। तो ये फिर भी कहा गया, और एक शब्द है हिंदी में जिसको कहा जाता है मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो मन चंगा, फिर वही बात होती है, मन माना संकल्प, यदि संकल्पों में मन चंगा, मन ठीक है, तो समझिए उसके अंजलि में ही गंगा आ गई, माना पवित्रता आ गई। गंगा हमेशा पवित्रता के लिए मानी जाती है। इस रीति से आप देखेंगे कि ये जो शब्द है मन, ये वहां से लेकर के यहाँ तक छाया हुआ है साहित्य में, पर अब हमारे जीवन में मन शब्द एक शक्ति रूप है, और इसको माइंड, मेंटल पावर, माइंड पावर, मन शक्ति माना गया है। अब ये मन में शक्ति आए तो वो कहाँ से आती है, वो आती है तीन बातें होती हैं। एक होता है सुनना, और दूसरा होता है देखना, तीसरा होता है बोलना। एक सुनना, एक देखना, एक बोलना। क्या देखना, ये इससे हम सुनते हैं ईश्वरीय ज्ञान। ये क्या ज्ञान है, कहा गया ज्ञान एक पराशक्ति, ज्ञान एक परम शक्ति है, माना उसके जैसी शक्ति और कोई नहीं है। तो वो जैसे कहा जाता है नॉलेज इज माइट, नॉलेज इज पावर। अब वो नॉलेज कौन सी है, अभी तक किसी को नहीं मिली है, नहीं मिली है। अब जाकर के बाबा वो ज्ञान दे रहा है। ज्ञान माना दूसरा एक ऐसा भी अर्थ निकलता है, ज्ञान माना समझ, तो वो खुद की समझ होनी चाहिए, ईश्वर की समझ होनी चाहिए। दो समझ हमारे अंदर हो, फिर तीसरी समझ है ड्रामा की। तो ये जो तीन बार का ओम शांति दादी जानकी का है, वो बिल्कुल सूट करता है कि एक मैं अपने को समझूं, फिर एक पिता परमात्मा को समझूं, क्योंकि उसके बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं, जिसको कहा जाता है कि जैसे जिसके मन में आया उसने वैसा बोला। अब जिसके जैसे मन में आया, माना जिसका जो संकल्प चला उसके बारे में वो बोलता गया, अब उसके आत्मा का प्रभाव इतना था कि वो साहित्य बन गया। ये वंडरफुल बात है। अब जबकि हम यहाँ आते हैं, यहाँ इतने हम समझे लाखों करोड़ों हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तो अब ये जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, जो मन में आया ईश्वर के बारे में नहीं बोलती हैं, इनके पास एक ही शब्द है, परमात्मा पराशक्ति माना शिव बाबा, बस एक निश्चित अर्थ उनके पास है, और यह समझ ही उनको श्रेष्ठ बनाती है, यह समझ ही इनको शक्तिशाली बनाती है, यह समझ ही इनको कामजीत बनाती है, क्रोध जीत बनाती है। पर ये एक समझ में बात थोड़ी नहीं आती है, एक बात समझ में नहीं आती है और मन उसमें चक्कर लगाता रहता है, माना संकल्प उसमें चलते रहते हैं और इतने संकल्प चलते हैं कि ये चार विकारों के बावजूद वो जीत नहीं पाता है। अच्छा अच्छा व्यक्ति आप देखेंगे, दो चार दिनों में कई भाई बहनों ने क्लास कराया तो यज्ञ की हिस्ट्री बोलते बोलते वो सुनाते थे कैसे बाबा था, मम्मा थी, उनके संबंधी थे, ऐसा ऐसा। ये बहुत वंडरफुल बात है। मुझे कई बार ऐसा कहीं भी इतिहास में आपको उदाहरण नहीं मिलेगा। एक उदाहरण यह है कि रामकृष्ण परमहंस, आपने नाम सुना होगा, विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस, उनकी युगल जो थी वो शारदा, तो वो शारदा को मातृ रूप में देखता था और जब भी उसके अंदर कुविचार आते या विचारों को, माना संकल्पों को, मन को वह कंट्रोल में लाना चाहता था, तब वह बहुत जोर से बोलता था माँ माँ। आज भी आप कभी कलकत्ता में जाएंगे तो वह शब्द वहां के भक्त बहुत जोर जोर से बोलते हैं, जिसको सादी भाषा में बोलते हैं, चिल्लाते हैं माँ माँ ऐसा। तो ये विचित्र बात थी इतिहास में कि रामकृष्ण परमहंस ने अपनी युगल पत्नी को माँ कहा। फिर आप देखेंगे ये जो महात्मा गांधी थे, उन्होंने भी अपनी युगल को बा कहा, वो भी शब्द माँ का उच्चारण देता है बा। यहाँ गुजरात है, ये गुजराती में माँ को बा बोलते हैं, कस्तूरी बा, तो वो बा मानता था। माना उसने भी यही कहा कि ब्रह्मचर्य का यही साधन है कि अपनी पत्नी के अंदर ऐसे श्रेष्ठ संकल्पों को आप निकालो। फिर तीसरा उदाहरण है अरविंदो घोष। ये अरविंदो घोष जो अरविंद आश्रम के बने, अरविंदो घोष भी उसने भी अपनी पत्नी से परमिशन ली तपस्या करने के लिए, मृणा लेनी उनका नाम था। तो ये जो तीन व्यक्ति हैं, इन्होंने माँ ऐसा शब्द कहा या मातृ स्वरूप में देखा। पर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक बहुत ही सुंदर और पवित्र और गृहस्थ आश्रम वाली बात थी। आप बाबा साकार बाबा जो था उनकी युगल थी यशोदा मैया, तो यशोदा मैया को बाबा कहता था बच्ची, और वो कहती थी बाबा। ये एक बहुत विचित्र और वंडरफुल बात थी कि वो, और आप देखेंगे हर पत्नी का एक, आप लोग जो यहाँ माताएं बैठी हैं, हर पत्नी का ये होता है संकल्प कि अगले जन्म या अगले सात जन्म में भी ऐसा ही पति मिले, इसीलिए करवा चौथ का व्रत करते हैं कि ऐसा पति मिले। परंतु ऐसा सब मानते हैं, सब माताएं ऐसे समझते हैं, परंतु यहाँ आपने देखा कि जीवित अवस्था में ही बाबा, सबको पता था कि ब्रह्मा बाबा नारायण बनेंगे अगले जन्म में, और ओम राधे श्री लक्ष्मी बनेंगे। तो मम्मा भी उसको, मम्मा यशोदा मैया भी मम्मा को मम्मा कहती थी। ये बहुत बड़ा अचंभा है इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कि कैसे हम मन को सुमन बनाएं, मन को, माना संकल्पों को श्रेष्ठ बनाएं। ऐसा तो आप देखेंगे ऐसे श्रेष्ठ संकल्पों को बनाने की प्रक्रिया यहाँ पर चलती। मैं कह रहा था चार विकारों से भी, काम से, क्रोध से, लोभ से भी, जो जबरदस्त विकार है और वो विकार नहीं माना जाता है। वंडरफुल बात यह है कि उसको हम विकार नहीं मानते हैं, पर विकारों में गिनती होती है उसकी। उसको कहते हैं मोह। मोह आप देखेंगे कि गीता में जैसे मैंने कहा अभी कि तू कामरूपी शत्रु को मार, उसका हनन कर, परंतु वो फिर अंत में ये नहीं कहता है कि हे भगवान मैं अब कामजीत बन गया, मैंने काम को जीत लिया, मैं ऐसा नहीं कहता है, अब मैं आत्मा काम विजयी हूँ, ऐसा वो अर्जुन नहीं कहता है। आप देखेंगे 18वें अध्याय में वो जब वो उसको कहा जाता है कि देख भाई हे अर्जुन, मैंने तुझे ज्ञान को आद्योपांत आदि से अंत तक समझाया, अब तेरी मर्जी, यथेच्छसि तथा कुरु, तेरे को जैसा अच्छा लगता है वैसे कर। ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे भारतीय संस्कृति में कहा जाता है और फिर ये कहा जाता है कि तुमको जैसे अच्छा लगता है वैसे करना। अन्य साहित्य में ये होता है कि तुम नहीं करेगा तो तुमको ये शिक्षा मिलेगी, जो बाद में हम भक्ति मार्ग में पाखंडीपन का दृश्य देखते हैं। तो ये अर्जुन ये सुनने के बाद कहता है कि हे भगवान नष्टो मोह, नष्टो काम नहीं बोलता है, वो कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्धा, अब मुझे मेरी स्मृति जागृत हुई, अब मेरी स्मृति जागृत हुई और मेरा मोह नष्ट हुआ, मैंने मोह को नष्ट किया। अब ये आकर के हमारी गाड़ी रुक जाती है यहाँ पर रुक जाती है। कोई भी मैं समझता हूँ दो चार दिनों में जिन्होंने क्लास कराई वो कोई बीच में आपको पूछते होंगे बाप समान, कल भी क्लास हो रही थी, बाप समान कौन कौन बनेगा, या यह भी कहा जाता है ब्रह्मचारी तो कोई भी बनता है पर ब्रह्माचारी कौन बनेगा। अब ब्रह्मा ने जो किया वैसा आचरण कौन करेगा। मैं हाथ नहीं उठवाता हूँ, ये प्रश्न निकलता है ऐसा, कौन करेगा, हम में से कितने होंगे जो कहेंगे हाँ हम ब्रह्मा बाबा ने जो किया हम करेंगे, वैसा करेंगे। तो ब्रह्मा बाबा ने सबसे पहले मोह की रस्सी, या कहते हैं मोह माया है, या कहेंगे मोह जाल है, तो ये मोह अटैचमेंट इसको जीतना बहुत मुश्किल है। अच्छे से अच्छे ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी अटक जाती हैं इस मोह के बंधन में, यहाँ तक कि जो घर बार छोड़ के आती हैं, समर्पित होती हैं, वो भी सेंटर के मोह में जकड़ जाती हैं, उनका भी मोह होता है। तो इस मोह के बंधन जो हमने देखा दादियों को, हम कभी सुनते हैं कि हमने, दादियां कहती हैं हमने वहां किया सेवा वहां किया, पर उनसे वहां से कुछ मिले ऐसी आशा उनको बिल्कुल भी नहीं रहती है, कोई संकल्प उनके उनमें उस उन आत्माओं में चलता ही नहीं है कि जहां हमने सेवा की है वहां से हमको कुछ मिलना चाहिए, नहीं, बल्कि वो एक निष्प्रिय निर्मोही आत्माएं हैं। ऐसा ये पहला जो पुर था बाबा का, दादियों का, ये सब निर्मोही आत्माओं का एक वंडरफुल जत्था था। अभी भी हमने बाबा को देखा, मम्मा को देखा नहीं, दादियों को भी, तो दादियां भी, अब हम देखते हैं दादी जानकी के पास, मैं देखता हूँ कोई कुछ भी लाता है, कितना 50 लाख लाया, 100 लाख लाया, कहते ले जा उधर दे दे, देखती भी नहीं है उसको। तो ये एक प्रथा है, तो इसीलिए हम और आप एक बार फिर सोचेंगे माना अपने संकल्पों को चेक करेंगे कि हम इस शरीर में रहते हुए कहाँ तक निर्मोही बने। क्यों ऐसा हम कहते हैं, मोह एक जाल है, क्योंकि समझिए कल हम वहाँ स्वर्ग के द्वार पर जाएंगे। स्वर्ग के द्वार पर बाबा कहे बच्चे अंदर पांव रख, तो पीछे देखेंगे कि मेरी बीवी आई, मेरा बच्चा आया, मेरी माँ आई। माँ से भी ज्यादा बीवी बच्चे आजकल मैं देख रहा हूँ, बच्चों से ज्यादा पोतों में मोह होता है माताओं का, वहां अटकते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं ये अभी मधुबन जाना है, नहीं वो पोते की परीक्षा है, उसको मुझे देखना है, बेटे का नहीं पोते का, ग्रैंडसन का। तो ये एक जाल है, इस जाल से जो निकल पाया हम समझते हैं वो जगत जीत है। काम से भी ज्यादा काम तो छोड़ देते हैं, कल किसी ने कहा वो तो पाई पैसे की चीज है, परंतु ये मोह नहीं छोड़ पाते हैं। कई बार अपने शरीर पर भी मोह होता है, धन पर भी मोह होता है, घर पर भी मोह होता है। तो ऐसा इसीलिए अर्जुन ने कहा कि मैं अब मोह, मेरा मोह नष्ट हुआ। मोह नष्ट हुआ माना जैसे समझिए हम कर्मातीत अवस्था तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि कर्मातीत अवस्था माना हम जो कर्म कर रहे हैं वह कर्म न तो मेरे शरीर की चिंता को लेके चले, न तो मेरे शरीर से संबंधित व्यक्तियों की चिंता को लेके चले। कर्म ऐसे होने चाहिए, कर्म करना है, क्योंकि कर्म किए बिना आत्मा रह नहीं सकती है। जैसे मैंने कहा संकल्प करना एक प्रक्रिया है, नेचुरल, बिना संकल्प किए कोई रह नहीं सकता है। गीता में कहा हुआ है संकल्प किए बिना कोई नहीं रह सकता है। तो अब संकल्प नहीं करते हैं तो वो तब होता है संभव जब हम अटैचमेंट में नहीं होते हैं। किसी के प्रति भी हमारा संकल्प न चले, एक संकल्प एक टिक तो कहाँ गया उसको, मेरा बाबा दूसरा न कोई। ऐसी हमारी स्थिति होनी चाहिए और होगी भी, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि एक बार हमने डोर पकड़ ली उस ईश्वर की तो वो हमारी नैया को पार लगाएगा, परंतु वह लगाएगा ऐसा हम चुप्पी साधे नहीं बैठ सकते। उसके साथ साथ कुछ तो मेहनत जरूर करनी पड़ती है, मेहनत तो करनी पड़ती है, तो बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला है। तो हमारी जो मेहनत है वो सूक्ष्म है, पल प्रतिपल ये मेहनत चलती ही रहती है, चलनी भी चाहिए, क्योंकि जैसे कहा जाता है कि जहां तक जीना तहां तक पढ़ना सीखना। जैसे दादी ब्रजेंद्रा थी, वो बार बार कहती थी सिख सिख झुक झुक मर मर। तो सीखना है, सीखना ही है, ये सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए कि अब हम बहुत कुछ सीख गए, हम ज्ञानी बन गए। नहीं, ज्ञान अथाह जिसको कहते हैं, ज्ञान बाबा ज्ञान का सागर है, बोलता ही रहता है। तो उस दिन भी यहाँ सुना कि सागर उछल रहा है, तो वो ज्ञान का सागर उछलता है, छलकता है, पर वो सागर को हम कितना हप कर पाएंगे। कहा गया कि चिड़ियों ने सागर को हप किया, तो वो जो चिड़िया है आपने सुना होगा, पक्षियों में चिड़िया को कहा जाता है ब्राह्मण पक्षी, उसको ब्राह्मण पक्षी कहा जाता है। तो ब्राह्मणों ने सागर को हप किया, माना जो ज्ञान भगवान में है, परमात्मा में है, ज्ञानेश्वर में है, वो सारा ज्ञान हमारे अंदर समा जाए, इतना असिमिलेट हो जाए, जज्ब हो जाए, वो अवस्था हमारी आनी है। तो उसके लिए क्या चाहिए, मैं कह रहा था सुनना, जितना सुनेंगे वो अंदर भरता जाएगा। उस दिन दादी जानकी कह रही थी, सुनो, कैसे सुनो, दो कान से सुनो ताकि वो अंदर चला जाए। तो दो कान से सुनो, नहीं तो रमेश भाई कहते हैं, हे भगवान, तूने एक गलती की है, मनुष्य को दो कान बनाए हैं, और दो कान से वो करता क्या है, एक कान से सुनता है और दूसरे से छोड़ देता है। पर दादी जानकी इसीलिए कहती कि दो कान से सुनो ताकि अंदर आत्मा की गहराई तक वो पहुंच जाए। तो ये आत्मा कितना ईश्वरीय ज्ञान सुनेगी, जिससे भी मिलता है, छोटा है बड़ा है, सुनना चाहिए। और दूसरा, देखना चाहिए। अब क्या देखेंगे, बाबा कहता है, बच्चे जितना भी समय मिलता है, जब भी समय मिलता है, चित्रों के सामने बैठ जाओ। ये जो चित्र हैं, उस सागर के प्रतीक हैं, इनमें बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ है। तो ये चित्र लोगों की समझ में नहीं आते हैं, उनको समझाना और बहुत समझाना पड़ता है। इसीलिए बाबा कहते हैं, तुम चित्रों के सामने बैठ जाओ ताकि वो चित्रों में जो ज्ञान है वो गहराई से अंदर उतर जाए। तीसरी बात थी बोलना। तो बोलना है तो ये कहा जाता है, एक तरफ स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मा प्रमदितव्यम, एक तो अध्ययन करो ईश्वरीय साहित्य का, और दूसरा ईश्वर ज्ञान को बोलो। बोलो, बोलने से क्या होता है, एक तो सामने वाला व्यक्ति उस ज्ञान को समझने की कोशिश करेगा, और उससे भी बड़ी बात क्या है, हम जो नहीं सोचे थे, या जिसको सादी भाषा में कहा जाता है, हमारे मन में वो बात थी ही नहीं, पर जब बोलने लगते हैं तो कई नई नई बातें वहां आ जाती हैं और हम बोलते हैं। जैसे अब मैं बोल रहा हूं तो कई नई नई बातें मैं देख रहा हूं कि कई नई नई बातें आ जाती हैं, बोलने में आ जाती हैं। अच्छा, ऐसा है, इसीलिए बोलना चाहिए। इसीलिए बाबा कहता है, बच्चे जो भी मिला उसको ये ईश्वरीय ज्ञान दो। हाँ, नस देख करके देना, उसकी नब्स देख करके देखना देना कि वो सुनता है कि ऐसे ही तवाई मुआफिक उधर इधर देखता है। देखता है तो छोड़ दो, उसको नहीं देना है। तो मतलब दो जरूर, और देने की प्रक्रिया के लिए ही एग्जीबिशन बने, प्रोजेक्टर शोज बने। अब इन दिनों में देखिए, जिधर जाइए उधर कई प्रकार के हमारे विंग्स के माध्यम से कार्यक्रम होते हैं, उसमें कई भाई बहनों को बोलने का चांस मिलता है, और वो उस विशेष को इस ईश्वरीय ज्ञान से संलग्न करके वो बोलते हैं। क्या मालूम नहीं था सारी दुनिया में, जैसे हमारा शब्द है, किसी को बोलिए आप शांति चाहिए तो कहेगा क्या करना है शांति लेकर के, अच्छा स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहिए, हाँ चाहिए, ऐसा बोलता है। ये स्ट्रेस फ्री या तनाव या टेंशन, उसको पूछिए कहाँ होता है तो कहते हैं मन में होता है। उसको मालूम नहीं है कि मेरे में होता है। जब उसको ज्ञान आएगा ये स्ट्रेस टेंशन तनाव मुझे आत्मा में होता है, वो कैसे होता है, नेगेटिव विचारों के कारण से, बुरी सोच के कारण से, किसी व्यक्ति विषय के प्रति हम जब नफरत करते हैं और वो नफरत जा करके हमारा टेंशन स्ट्रेस बन जाती है। यदि जैसे सोचना, भला सोचो, सबका भला हो, तो सबका भला हो ऐसी सोच सोचते हैं या विचार करते हैं या मन में संकल्प करते हैं तो वो मन सुमन बनता है। इसीलिए और एक वाक्य कहा गया, मनः एव बंध मोक्षयो कारणम्। मनः एव बंध मोक्षयो कारणम्, यह मन ही बंधन और मोक्ष का कारण बनता है। तो अब उनको पता नहीं कि ये मन क्या चीज है, सच में तो मैं बताऊं आपको, क्योंकि हम जब संस्कृत साहित्य पढ़ते थे तब वो उनको हमको ही नहीं मालूम था यह ज्ञान तब लगता था, तब हम बुद्धू थे, कुछ भी ज्ञान नहीं था। अब लगता है कि उसके अलावा भी मनुष्य बहुत कुछ सीख सकता है, बहुत कुछ बोल सकता है, बहुत कुछ कार्य कर सकता है। इसीलिए मन, ये मन ही माना, ये संकल्प ही, अब उसमें भी ये अटैचमेंट के जो संकल्प हैं, मोह के जो संकल्प हैं, उन संकल्पों से हम जितना अपने आप को छुड़ाते जाएंगे उतना, जैसे कहा ना मोक्षयो, मोक्ष क्या, छुड़ाना, मुझे मुक्त करो, मोक्ष दो, छुड़ाओ, तो छुड़ाना माना उसे फ्रीडम देना। तो जितनी फ्रीडम हम अपने आप को देह के संबंधियों से लेंगे उतना हम आत्माएं शुभ सोचेंगे। क्योंकि जब आप सुनते हैं बाहर में कि आजकल भाई भतीजावाद बहुत है, ये क्या है भाई भतीजावाद, मोह है। इस मोह के बंधन में आके मनुष्य क्या कुछ करता है, काम गया, लोभ गया, अहंकार गया, क्रोध गया, परंतु यहाँ देखते हैं कि ये मोक्ष बंधन बन जाता है। इसीलिए इस बंधन से मुक्त होने के लिए बाबा ने हमको इस मन का बहुत सुंदर ज्ञान दिया, और जितना इस पर सोचेंगे और बोलेंगे उतना ही हम आत्माओं में बहुत बल भरेगा। निर्मोही आत्मा ही जा करके मोहातीत बनती है, कर्मातीत बनती है। कर्मातीत बनने का सबसे बड़ा साधन है कि हम संकल्पों को कितना आत्मा में, बाबा में और ड्रामा में बांध ले, यह बंधन ही मोक्ष का कारण हो सकता है। इन विचारों के साथ आपने सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।